Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Ambrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी।
RBI Monetary Policy Committee members express caution on upside risks to inflation. India's retail inflation eases to a 10-month low of 4.85%. Benchmark indices bounce back from a 4-day losing streak. Sensex gains 599 points. Nifty 50 settled at 22,147. And oil prices spike on reports that Israel had attacked Iran. Brent crude was trading at $87.19 per barrel.
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने मुद्रास्फीति बढ़ने के प्रति आगाह किया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति 10 महीने के न्यूनतम स्तर 4.85% पर पहुंची। घरेलू शेयर बाजारों में आज चार दिन से चली आ रही गिरावट का दौर थमा और सुबह निचले स्तर पर शुरू होने के बाद शाम को बाजारों ने तेजी दर्ज की। सेंसेक्स में 599 अंकों की तेजी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी 22,147 अंकों पर बंद हुआ। और इन खबरों के बाद कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, तेल के मूल्यों में तेजी दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $87.19 प्रति बैरल दर्ज किया गया।
In our top story, majority of the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee members expressed caution on the upside risks to inflation, particularly emanating from the uncertainties in food prices. At the panel's policy review showed the minutes of the meeting on April 19. In March, India's retail inflation eased to a 10-month low of 4.85% as against 5.09% in February. This data was released by the Ministry of Statistics and Program Implementation on April 12. The inflation numbers were the lowest since May 2023, when it was at 4.31%. RBI projected a CPI inflation for 24-25 at 4.5%, with the first quarter at 4.9%, the second quarter at 3.8%, the third quarter at 4.6%, and the fourth quarter at 4.5%. And on this, we are joined by our business analyst, Shri Vishal Dahiya. Vishal ji, a warm welcome to you on Market Mantra.
Thank you, Arjun. Thank you.
Well, it's good to have you on the program, Vishal. What's your take on India's retail inflation at a 10-month low, 4.85%, which is about 24 basis points from the February high of 5.09%? It's relatively minor, but the RBI has also expressed caution that there's an upside risk to inflation as well, especially with oil prices globally going up because of West Asia tensions. What's your view on this in terms of retail inflation? Can we maintain this? Can we hit below 4% at some point next year? Because the projections right now are anywhere between 3.8 to 4.5% for all four quarters.
Well, Arjun, you know, the numbers which have come in, the inflation numbers are indeed a positive, welcome, positive sign and a positive indication as well. But the kind of caution which has been sounded by RBI is pretty much on, you know, on the guided lines, because and that's what is expected as well, because with the inflation figures, you will have to be cautious given the geopolitical developments, given the fact that, you know, there is Hawkish stand which has been maintained by the Fed as well, as far as their monetary policy is concerned. So all in all, you're right there when you say that the big question is not in the short term. The big question is whether we can sustain this in the long term as well. A sustained, rally at the stock market or at the Dalal Street, of course, would require these positive surprises and inflation figures to continue. Otherwise, this will keep on going to and fro. And as far as inflation is concerned, both the government and the RBI has very strictly maintained that this is something which will have to be dealt at a priority level, and this will have to be dealt in addition to what the basic economic fundamentals are, be it the overall macroeconomics we're talking about, or sector-wise we're looking at banking and other sectors also. So inflation figures do have a very, very, very important place in terms of not only defining the way the markets are going to move ahead, but also defining the way various policies of the government will also move ahead.
लेकिन विशाल जी, जो इस समय जियो पॉलिटिकल जिस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, फिलिस्तीन और इसराइल का पहले से था, अब अगर ईरान और पैलेस्टीन का भी पूरा एस्केलेट करता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब अगर क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन को काबू में रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा सरकार के लिए?
बिल्कुल मुश्किल होगा. इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉशियस अप्रोच की तरफ इंडिकेट किया है, वो इसीलिए किया गया है. लेकिन एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे एक थोड़ी सी सरसरी निगाह डाले तो साफ दिखाई देता है, आज जो रिटेलिएशन हुआ इसराइल की तरफ से और उसके जवाब में जिस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान से आई हैं, उनसे थोड़ी सी राहत हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से किसी तरह का एक्स्ट्रा हॉकी स्टैंड, जैसे कहा जाए कि तुरंत जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से करने की कोई कोशिश होगी, उस तरह के कोई इंडिकेशन नहीं आए हैं. और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कहने की बजाय एक दो देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी माना जा सकता है, तब तक जब तक कि ईरान अपने जो एक्शंस हैं उनका दायरा इसराइल से आगे नहीं बढ़ाता है, सऊदी अरेबिया की तरफ नहीं बढ़ता है. और अगर वैसी स्थिति हुई तो निश्चित रूप से जिस तरह से आज तेल के कीमतों में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग $3 प्रति बैरल के आसपास की बढ़ोतरी थी, उसमें और काफी शार्प इंक्रीज हो सकता है. लेकिन अगेन एक और इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहां यह है कि जहां तक भारत की बात है, भारत के संबंध इसराइल के साथ भी उतने ही बेहतर हैं जितने कि ईरान के साथ हैं. और एक जिसे डिप्लोमेटिक टाइटरोप वॉक जिसे कहा जाए, वो भारत ने पिछले कुछ सालों में बड़े बेहतरीन तरीके से की है. अब ये देखने का समय आ गया है कि वो जिस तरह से डिप्लोमेटिक चैनल्स हमने खोल के रखे, जिस तरह से अच्छे संबंध हमने दोनों देशों के साथ, और केवल इन्हीं दोनों देशों के साथ नहीं, उस क्षेत्र में बाकी देश हैं, सऊदी अरब है, कतर है, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, सबके सब उनके साथ जिस तरह से हमने अपने दोस्ताना संबंध रखे हैं, और रशिया और यूक्रेन के जो पूरा युद्ध चलता रहा उसके दौरान रशिया के साथ भी हमारे संबंध जिस तरह से बेहतर बने रहे, तो ये एक हाइफनेटेड डिप्लोमेटिक अप्रोच हमने जो रखी है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में, उसका कितना फायदा अब हमको आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में मिल पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है.
अपार्ट फ्रॉम फ्रेट चार्जेस एट रिस्क बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस, what about climate change? Even though in North India, for instance, cereal crops, if you take the example of wheat, harvesting is not at risk right now, for that matter. No, it's not globally in Russia either. But if you look at vegetable oil, where we are dependent upon imports, the government can take moves in terms of reducing the customs duty. But when it comes to food inflation, what are the measures being taken and what's the risk really? Even though it is 8.52% in this figure of retail inflation at 4.5%.
Well, food inflation is, of course, a very important ingredient of the entire inflationary process of the, jigsaw puzzle when we look at it. But in terms of the food inflation, and you're talking about the entire food safety net, or, the grains which are grown in India, important aspect here is that let's go back a little bit, around 4 or 5 days back, India's private Met forecaster had indicated, now although an official confirmation of the same from IMD is yet to come in, but the private forecaster has pointed out that this time around the monsoon is going to be near normal. So that is a sigh of relief as far as, the entire crop scenario is concerned. In terms of dealing with the food inflation, well, Arjun, I would say let's not also forget that we are in the middle of the election season also. So some policy measures, whether to, increase a particular customs duty or decrease it, or, look at the export-import imbalance as well in a particular, food grain or an object. Clearly, we will have to wait for almost a month and that picture would emerge, although it can be said right now that we are likely to see a continuity in terms of all these policy measures. There might not be any surprises lurking around the corner on these things.
It appears we have strong buffer stocks in cereal and pulses, even though central India is going through a dry weather spell right now. So you see all of this being managed quite well for the entire calendar or fiscal year as far as food inflation is concerned, and you expect retail inflation to maybe hit the 4% mark by next year?
Well, all of us would want that to happen as far as inflation figure is concerned, because that is not only an indicator of the macroeconomics but also, troubles us individually also. So of course all of us would be hoping, but when we look at various indicators and various implications and impact scenario as well, the inflation jigsaw puzzle, as I was mentioning earlier, looks like we are headed in the right direction. But as I was saying earlier, it will have to be a sustained positive surprises in terms of inflation figures. The inflation going up and down might not mean much in the long run. A sustained rally in terms of lower inflation figures is something what not only the market is looking at, but what perhaps economy and individuals will also be looking at.
Lekin agar Vishal ji, jo jaise indications hain, agar election ke baad ye jo mudrasfiti mein ko kabu mein nahi rakh paaye gaye aur agar badhat ki taraf rahi mudrasfiti, to रिजर्व बैंक के सामने कौन से विकल्प होंगे इसको कंटेन करने के लिए? आपको क्या लगता है, जो ब्याज जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें किसी तरह का कोई बदलाव करने वाला है रिजर्व बैंक ऐसी स्थिति में?
देखिए, रिजर्व बैंक की तरफ से पहले भी एक दो बार साफ कर दिया गया है कि जो उनकी तरफ से जो पॉलिसी डिसीजन होगा, जो रेट कट की बात जिसम करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसमें कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहेगा इन्फ्लेशन। तो रिजर्व बैंक की एक जिसे कहा जाए कड़ी नजर इन्फ्लेशन फिगर्स पे रहेगी। अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काबू में नहीं आती है तो रिजर्व बैंक से कोई राहत मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है यहां पे। और सीधे तौर पर एक ग्लोबल इकोनॉमी के सिनेरियो से भी अगर इसको समझना चाहें तो जो अब अलग अलग फेड की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है फेडरल बैंक की तरफ से, उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि वहां जो सबसे बड़ी इकोनॉमी जैसे माना जाता है, वहां भी लगभग 2025 तक यानी कि लगभग अगले एक साल तक किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। तो कोई बड़ी राहत की उम्मीद ना ही रखी जाए तो बेहतर है, हालांकि ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं होंगी।
So even though the current repo rate is 6.5%, the last time RBI increased the repo rate was in February 2023 by 25 basis points, and since then there hasn't been any change in the repo rate. With the remaining RBI meetings for the calendar of fiscal year, do you see, with the linkage of inflation figures to the decision of the repo rate, do you see any reduction in interest rates by the RBI sometime in the future, which is meaningful?
Well, I have already responded to that, Arjun, but this would be like peeking too far into the future. I would say, Reserve Bank, as I was saying earlier, has made its point very clear, and we will have to sort of bear with what their standard policy mechanism is as far as deciding interest rates or going forward with the overall macroeconomic monetary policy plan is concerned. This is going to be really important here, in addition to the inflationary figures. Let's wait around a month and a half, and it's going to be really important to see as to what the new government which comes into power takes a stand as far as dealing with inflation is concerned, dealing with the entire food safety net is concerned. It is going to be because during the election season we have seen there are a lot of promises which have been made by all political parties. They will also have to put in place their action plan once the elections are over, and that's not too far away. And once that action plan is revealed for the people, we will have a clear-cut idea, and not only us, even the RBI will have a clear-cut idea as to this is what the government's line and length is. These are what the inflationary figures are, and based on that, we might see, some adjustments, if required, being done by the RBI. But as I was saying, peeking a bit too far into the future, let's hold our horses here. But clearly, let's not be too hopeful in terms of, getting some big relief. But yes, if the inflationary figures tend to ease continuously on a very, sustained mode, and the government policy also is in tune with what RBI is looking
right.
forward to, then we might see some relief there.
जी और चलते हैं अगली खबर की ओर, शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में आज चार दिन से चली आ रही गिरावट का दौर थमा और सुबह निचले स्तर पर शुरू होने के बाद शाम को बाजारों ने तेजी दर्ज की। बाजारों में आज का दिन उथल पुथल भरा रहा, लेकिन बंद होने के समय तक बैंकिंग और धातु कंपनियों के शेयरों ने सूचकांक को ऊपर उछाल दिया। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 599 अंक यानी 0.83% बढ़कर 73,088 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 151 अंक यानी 0.69% की बढ़त के साथ 22,147 अंकों पर जा पहुंचा।
Benchmark indices bounce back from the morning's low to break a four-day losing streak in yet another volatile session today, held by gains in banking and metal names. BSE Sensex gained 599 points, 0.83% to close at 73,088, while Nifty 50 jumped 151 points, 0.69% to settle at 22,147. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was down 0.4% and the small-cap index was flat. In the Sensex pack of 30 companies, 22 posted gains while 8 logged losses. Bajaj Finance was the top gainer as it added 3.1%, Mahindra and Mahindra raised 2.9%, and HDFC surged by 2.4%. On the other hand, HCL Tech declined 1.2%, Nestle fell 1%, and TCS slipped 0.9%. In sectoral indices, 9 sectors logged gains whereas 11 sectors posted losses. Bankex climbed 1%, metal and financial services gained 0.8% each, realty lost 0.6%, information technology fell 0.5%, then healthcare ended 0.4% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 2,073 companies fell while 1,717 gained. Shares of 113 companies remain unchanged.
और विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.47 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 106 पर कारोबार कर रहा था। विशाल जी, शेयर बाजारों का हाल हमने देखा और अच्छी बात है कि आज जिस तरह से गिरावट लगातार चार दिनों से चली आ रही थी वो रुक गई। इसको आज की जो बढ़त है बाजारों की, उसके क्या प्रमुख कारण हैं आपके अनुसार और आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं?
देखिए, जो बियरिश मार्केट है और सीधे तौर पर अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो एक जो अच्छी बात है वो ये कि लगभग 4 दिनों से जिस तरह का नुकसान हो रहा था बाजार में, जो हफ्ते का अंत हुआ है उसमें कुछ राहत जरूर मिली है। दो तीन चीजें यहां समझना बहुत जरूरी होगा, ना केवल ये कि कारण क्या है, और कारण कुछ हम इससे पहले जब बातचीत कर रहे थे तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो जो पॉलिटिकल टेंशन है या फिर एक क्वार्टर फॉर अर्निंग्स की भी एक्सपेक्टेशंस की बात करें वो सब हो सकता है, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त बाजार में हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से। और पहला ये कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है यानी कि एफआईआई जिसकी बात करें, वो लगातार पैसे की निकासी कर रहा है बाजार से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पिछले 3 या 4 सेशन में 20,000 करोड़ से ज्यादा एफआईआई विड्रॉ कर चुका है, लेकिन उसके ठीक उलट जो डीआईआई है यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लगभग पिछले 6-7 सेशन से खरीदारी कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो बैलेंस अप्रोच जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि इसी तरह का लगभग मार्च के महीने में एक बार 2 या 3 दिन तक इसी तरह का माहौल रहा था, मार्केट में गिरावट दर्ज की गई थी, फिर उसके बाद बढ़ोतरी हुई, तो यही एक पैटर्न हमको तब भी देखने को मिला था। अब इन दोनों के पास अपने अपने फैक्टर्स हैं। जहां तक DII की बात करें तो DII के लिए जो है जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको कहते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर भी पड़ता है। जहां तक FII की बात है तो FII के लिए जैसे मैं कह रहा था जियो पोलिटिकल टेंशन एक बड़ा कारण है, बढ़ती तेल की कीमतें एक बड़ा कारण है, एक इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी जो है तो उसमें कुछ बदलाव अभी हुए हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है, खासतौर पर पिछले 3-4 दिन में जो हुआ है। जहां तक बाजार की बात है, अगर सवाल ये है कि क्या बाजार अब अगले हफ्ते से बढ़ना शुरू होगा, क्या उसमें बढ़ोतरी हमें दिखाई देगी या उसमें नुकसान हो सकता है, क्या मार्केट सेंसेक्स नीचे आएगा, तो एक एनालिसिस जो किया जा सकता है वो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त देश में चुनाव का भी माहौल है, एक चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तो राजनीतिक बातें भी बहुत हो रही हैं, उसका भी थोड़ा सा असर पड़ता दिखता है कभी कभी बाजार पर। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, या फिर मैं इसे कहूंगा कि वॉलिटिलिटी जो है, वो शायद हमको अगले कुछ दिनों तक और देखने को मिले। हो सकता है बाजार कभी हमें ऊपर जाता दिखाई दे, फिर कभी थोड़ा सा नीचे आता दिखाई दे, तो ये एक इवन पेस एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा इस समय भूल होगी।
विशाल, स्पीकिंग ऑफ वॉलिटिलिटी, द वॉलिटिलिटी इंडेक्स इज एट 19, इट वेंट अप बाय 4% टुडे, एंड यू डिड मेंशन वेदर द मार्केट्स विल go up next week when it reopens after it went up by almost 600 points today on the Sensex. It's all dependent upon FII buying interest, is it not? Even though they were the net buyers to the tune of 130 crores only, do you see them once again come back into that bullish phase, or should one wait for once the election results are out? Do you think the markets are going to be choppy in between?
Arjun is saying, you know, it is likely to be choppy waters. How choppy will depend upon various factors. One of the factors is, of course, the ongoing geopolitical conflict as well. That has a lot of impact on all global markets. We've seen how it has tumbled down continues to tumble down in other, indices elsewhere as well. But as far as India is concerned, you know, there are other factors as well. The most important factor right now is the electoral process, which is in. There is a new government which has to come in after a month or so. So everybody, including the FIIs, DIIs, the retail investor as well, they're trying to, make sense of the situation. A push indicator or pull indicator at this point in time seems to either bring down the market,
right,
or take it on an upswing as well. So as far as next week is concerned, to keep it short, we can expect the choppy waters, the volatility to continue. How, high it might go or how low it might go, that is not the question. The question is whether, the market will be able to sustain the levels at both high and the low point.
Right. और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों और यूरोपीय बाजारों का हाल जान लेते हैं। सभी एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट दिखाई दी। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.60% की गिरावट देखी गई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की गिरावट आई। हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में 1%, जापान के निकेई सूचकांक में 2.7% और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजार निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.3%, लंदन के फुटजी में 0.5% और जर्मनी के डेक्स में 0.6% की गिरावट चल रही थी। विशाल जी, एशिया और यूरोप में लगभग सभी जगह गिरावट का दौर रहा, क्या ऐसे खास कारण हैं कि सारे बाजारों में नीचे का ही रुख हमें देखने को मिला?
देखिए, जो ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की खबरें हैं, उसका जितना असर भारतीय बाजारों पर पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा असर कुछ जो एशियाई बाजार हैं उन पर या जो यूरोपीय बाजार हैं उन पर पड़ता दिखता है। और ये केवल मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। जब भी किसी ग्लोबल इस तरह की कोई ग्लोबल क्राइसिस सिचुएशन होती है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर जो दिखता है वो बाकी जो एशियाई बाजार हैं या जो यूरोपीय बाजार हैं वहां देखने को मिलता है। जहां तक जापान के निकाय की बात है, वहां जो सूचकांक है वो लगातार गिर रहा है और इसकी चर्चा हमने एक बार पहले भी की थी, 3-4 हफ्ते पहले, की जापानीज इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, किस तरह से वो उसको डील करना चाहते हैं। हालांकि ये एक अलग चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर कारणों की तरफ देखें तो कारण लगभग वही है जो भारतीय बाजारों के लिए हैं, लेकिन उनका असर वहां ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा जिस तरह का हॉकिस स्टैंड जो है, मतलब जो फेडरल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है बाकी देशों के, उनकी तरफ से बार बार लिया जा रहा है, और यूएस सेंट्रल बैंक की तरफ से भी जो इस तरह की स्टेटमेंट आई है उससे एक इंडिकेशन साफ मिल जा रही है कि राहत वहां से नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए शायद वो जो दौर है नुकसान का या मार्केट के नीचे आने का, वो हमें लगभग अक्रॉस द बोर्ड जो ये बाकी विदेशी बाजार हैं, मार्केट्स हैं, उनमें देखने को मिलता है।
Moving on to the U.S. Stock market, U.S. stocks closed near the unchanged mark on Thursday as investors sifted through the latest corporate earnings, while economic data and comments from the Fed Reserve officials suggested the central bank was unlikely to cut interest rates in the near future. The S&P 500 lost 0.22%, while the Nasdaq composite was down by 0.52%, and the Dow Jones Industrial Average rose 0.06%. So the Fed has also taken a similar stance to RBI, leaving the discount rate unchanged, or as we call it, repo rate, once again citing inflation as a cause for concern. The stock markets saw some correction, but the US dollar index has gone up to 106.3. How concerned should the global economy be with the demand for dollars going up and the value going up as well?
Well, Arjun, you know, I remember an earlier conversation with you where we were talking about the exactly opposite scenario as to why, you know, during the budget discussion as to why there are certain economies in the world which are trying to, you know, move out of the entire dollar economy. But, you know, fortunately or unfortunately for both sides, whichever side you're on in this discussion, in a sort of a mixed economic situation like this, when inflation is breathing down the neck for most of the, you know, developed economies, also there is a conflict situation, geopolitical conflict situation, not in one corner of the world, but at least 3-4 corners of the world. This tends to give a dollar a sort of a breathing space. And coupled with the fact that, you know, the Fed has taken up a very strict hawkish stand here, one of the statements coming in from one of the Fed officials was that don't expect any cuts at least till 2025. So these are clear indicators as to how the entire, you know, developed economies are trying to grapple with the entire situation.
Let's have a look at the oil market. The benchmark contract surged more than $3 before dipping back down. Brent futures were up 14 cents, 0.2% at $87.25 per barrel. US WTI contract climbed 23 cents, 0.3% to $82.96 per barrel when reports last came in.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 33 रुपए की गिरावट के साथ 72,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। मई अनुबंध के लिए चांदी गिरावट के साथ 83,218 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना दिन के कारोबार के दौरान आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ $2,399.10 प्रति औंस के स्तर पर रहा। वहीं चांदी भी 0.11% की बढ़त से $28.70 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।
Closing headlines before we close. RBI Monetary Policy Committee members express caution on upside risks to inflation. India's retail inflation eases to a 10-month low of 4.85%. Benchmark indices bounce back from a 4-day losing streak. Sensex gains 599 points. Nifty settles at 22,147. And oil prices spike on reports that Israel had attacked Iran. Brent crude was trading at $87.19 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Mantra.